कल्पना कीजिए कि कोई बहुत ही पुरानी पारिवारिक वंशावली पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते अचानक एक जगह आकर पता चलता है कि एक ही पीढ़ी में, मतलब केवल एक पिता से 8600 बेटे पैदा हुए।
अरे बाप रे,
8600।
हाँ, 8600।
अब अगर आज के विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो ये जैविक रूप से पूरी तरह असंभव है ना?
बिल्कुल, एकदम असंभव है।
कोई भी सामान्य इंसान यही सोचेगा कि भाई लिखने वाले से कोई बहुत बड़ी गलती हुई है या फिर ये पूरी किताब ही मनगढ़ंत है।
सही बात है।
लेकिन क्या हो अगर प्राचीन इतिहास में ये कोई गलती न होकर रिकॉर्ड रखने का एक बहुत ही विशेष तरीका रहा हो?
एक अलग नजरिया, बिल्कुल।
तो आज के हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम कुछ ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकते हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ इसके लिए।
देखिए, ये सच में एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अतीत को आखिर किस चश्मे से देख रहे हैं। तो आज हम डॉक्टर रॉबर्ट वेनॉय के ओल्ड टेस्टमेंट हिस्ट्री के लेक्चर 21 के नोट्स की बहुत ही गहराई से पड़ताल कर रहे हैं।
जी,
इन नोट्स में मुख्य रूप से जो प्राचीन कुलपति हैं, यानी जिन्हें पैट्रियार्कल कालक्रम कहा जाता है, और एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में इब्राहिम के जीवन का अध्ययन किया गया है।
अच्छा, तो फोकस इब्राहिम पर है।
हाँ, और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अलग अलग प्राचीन ग्रंथों, सदियों पुरानी वंशावलियों और जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उनके बीच विरोधाभास पैदा होता है।
मतलब जब वे आपस में मेल नहीं खाते।
बिल्कुल, जब वे मेल नहीं खाते तो इतिहासकार किसी ऐतिहासिक घटना का सटीक समय कैसे तय करते हैं?
ये तो एक जासूसी पहेली जैसा लग रहा है। और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम तय कर लेना जरूरी है।
हाँ, वो बहुत जरूरी है,
क्योंकि आज की इस स्रोत सामग्री में कुछ धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ शामिल हैं, जैसे कि बाइबल के कुछ हिस्से। तो इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी धार्मिक विचारधारा या किसी पक्ष या विपक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है।
एकदम सही।
हम यहाँ बिना किसी धार्मिक चश्मे के सिर्फ एक इतिहासकार और एक खोजी जासूस की हैट पहनकर बैठे हैं। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ डॉक्टर वेनॉय के लेक्चर में दिए गए अकेडमिक और ऐतिहासिक तर्कों को डिकोड करने पर रहेगा।
और ये तटस्थता ना इतिहास को समझने के लिए सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जब हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उस समय के लोग दुनिया को कैसे देखते थे। उनका समय और संख्याओं को मापने का तरीका हमारे आज के आधुनिक तरीकों से बहुत अलग था।
हाँ, वो आज के जैसे कैलेंडर्स या घड़ियां तो इस्तेमाल नहीं करते थे।
बिल्कुल नहीं। अगर हम अपनी आज की सोच को उन पर थोपने की कोशिश करेंगे तो हम हमेशा गलत नतीजे पर ही पहुंचेंगे।
ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत करते हैं। इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि कोई बहुत लंबी सड़क यात्रा पर जा रहा है और नेविगेशन के लिए दो अलग अलग GPS ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है।
अच्छा, दो अलग ऐप।
हाँ, एक ऐप कह रहा है कि मंजिल तक पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे और दूसरा ऐप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। ऐसी स्थिति में कोई भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर सही रास्ता और सही समय कौन सा है।
बिल्कुल।
तो प्राचीन कालक्रम, विशेष रूप से इब्राहिम जैसे किसी व्यक्ति के अस्तित्व का समय तय करना, वो भी कुछ ऐसा ही है ना?
ये GPS वाली उपमा स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती है।
शुक्रिया।
प्राचीन कालक्रम को तय करने में भी इतिहासकारों के पास ऐसे ही अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं। डॉक्टर वेनॉय के नोट्स के अनुसार इस पूरी टाइमलाइन की पहेली में 2 सबसे बड़े वेरिएबल्स हैं।
2 वेरिएबल्स, ठीक है।
पहला वेरिएबल है 1 किंग्स 6:1 का संदर्भ।
अच्छा।
इस प्राचीन पाठ में एक आंकड़े का जिक्र है, 480 वर्ष।
अब इतिहासकारों के सामने सबसे बड़ी पहेली यह है कि क्या इस 480 वर्ष के आंकड़े को शाब्दिक रूप से लिया जाना चाहिए?
मतलब क्या हमें 1-1 साल गिनना चाहिए?
हाँ, क्या ये एकदम सटीक गणित है या फिर प्राचीन शैली के अनुसार ये केवल एक प्रतीकात्मक या योजनाबद्ध संख्या है जो बस किसी बड़े कालखंड को दर्शाने के लिए इस्तेमाल की गई है?
समझ रही हूँ।
केवल इस एक संख्या को कैसे पढ़ा जाता है, इसी आधार पर एक्सोडस यानी मिस्र से जो इसराइलियों के निकलने की घटना थी, उसकी तारीख या तो बहुत जल्दी की तय हो जाती है या फिर बहुत बाद की।
तो अगर इस 480 साल वाले पहले आंकड़े ने ही इतना सिरदर्द पैदा कर रखा है, तो मैं सोच सकती हूँ कि जो मिस्र में बिताए गए वास्तविक समय को लेकर विवाद है वो कितना उलझा हुआ होगा।
बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बहस तो इसी दूसरे वेरिएबल को लेकर है।
बिल्कुल। असल विवाद की जड़ यही दूसरा वेरिएबल है जो एक्सोडस 12:40 के पाठ से जुड़ा है। इसे समझने के लिए हमें दो अलग अलग प्राचीन पांडुलिपियों को देखना होगा।
ठीक है।
पहला है मासोरेटिक टेक्स्ट।
मासोरेटिक टेक्स्ट, ये क्या है?
इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये पारंपरिक रूप से सदियों तक बहुत ही बारीकी से कॉपी किया गया एक मानक हिब्रू संस्करण है।
अच्छा, मतलब ओरिजिनल हिब्रू।
हाँ, ये मासोरेटिक टेक्स्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि इजरायली 430 वर्षों तक मिस्र में रहे।
430 साल,
ये तो एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा आंकड़ा रखता है। इसमें विवाद कैसा?
विवाद तब शुरू होता है जब हम इतिहास के एक दूसरे संस्करण को देखते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन अनुवाद है जिसे सेप्टुआजेंट कहा जाता है।
सेप्टुआजेंट?
हाँ, ये हिब्रू ग्रंथों का प्राचीन यूनानी भाषा में किया गया अनुवाद है।
अच्छा, यूनानी में?
जी, ये उन यहूदियों के लिए तैयार किया गया था जो यूनानी संस्कृति में घुल मिल गए थे और मूल हिब्रू नहीं पढ़ पाते थे। इस सेप्टुआजेंट संस्करण में एक छोटा सा लेकिन पूरी टाइमलाइन को हिला देने वाला बदलाव है।
क्या बदलाव है?
ये कहता है कि वे कुल 430 वर्ष तक तो रहे, लेकिन इस समय का बंटवारा था।
बंटवारा मतलब?
मतलब वे 215 वर्ष कनान में रहे और बाकी के 215 वर्ष मिस्र में रहे।
अरे, सीधे सीधे समय को आधा कर दिया।
बिल्कुल,
430 वर्षों का सीधा हिसाब बनाम 215 वर्षों के दो हिस्से। ये तो इतिहास के पन्नों में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देगा।
बहुत बड़ा अंतर।
अगर हम इस 215 वर्षों वाले सिद्धांत को एक पल के लिए सच मान लें, तो इसका आधार क्या है? मतलब क्या किसी अन्य प्राचीन लेखक ने भी इस आधे समय वाले सिद्धांत का समर्थन किया है?
हाँ, किया है। और इस 215 वर्षों वाले दृष्टिकोण को सबसे बड़ी ताकत मिलती है नए नियम के गलातियों 3:17 से।
अच्छा,
वहाँ क्या लिखा है?
वहाँ लेखक जो पॉल है वो एक तर्क देते हुए कहते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से जो वादा किया था उसके ठीक 430 वर्ष बाद व्यवस्था आई, यानी लॉ आया।
ओके।
अब अगर कोई इस टाइमलाइन को गणित के हिसाब से जोड़े तो वादा इब्राहिम से किया गया था और व्यवस्था मूसा के समय आई। गणना कुछ इस तरह से बैठती है, ध्यान से सुनिएगा।
हाँ, मैं जोड़ रही हूँ।
इब्राहिम से लेकर इसहाक तक 25 वर्ष। इसहाक से याकूब तक 60 वर्ष।
ठीक है, 25 और 60
और याकूब के मिस्र जाने तक 130 वर्ष। इन सबको जोड़े 25 + 60 + 130 तो ठीक 215 वर्ष बनते हैं।
अरे वाह।
और फिर अगर वे मिस्र में भी 215 वर्ष रहे तो कुल मिलाकर 430 वर्ष हो गए।
ये गणित तो इतना सटीक बैठता है कि लगता है जैसे किसी ने सच में कैलकुलेटर लेकर इसे सेट किया हो,
है ना?
अगर 215 + 215 एकदम 430 बन रहे हैं तो फिर मासोरेटिक टेक्स्ट के उस 430 वर्षों वाले मूल हिब्रू पाठ को क्यों माना जाए? क्या पॉल का यह गणितीय विवरण 215 वर्षों वाले सिद्धांत को सही साबित नहीं कर देता?
यहीं पर हमें प्राचीन संस्कृति के माइंडसेट को समझना होगा, उनकी सोच को।
वो कैसे?
डॉक्टर वेनोई यहाँ KSA किचन नाम के एक बेहद सम्मानित विद्वान का तर्क सामने लाते हैं। किचन ये समझाते हैं कि प्राचीन लेखक जैसे कि पॉल, वो कोई स्प्रेडशीट या कैलकुलेटर लेकर सटीक अकाउंटिंग नहीं कर रहे थे।
अच्छा।
जब पॉल ने 430 वर्षों का जिक्र किया तो वे गणित का हिसाब नहीं दे रहे थे, बल्कि वे अपने समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध सांस्कृतिक रूप से गहराई में रचे बसे समय खंड का हवाला दे रहे थे।
मतलब वे श्रोताओं को बस एक बड़े काल खंड की याद दिला रहे थे, ना कि एक एक साल की गिनती करवा रहे थे।
एकदम सटीक। प्राचीन साहित्य में ना संख्याओं का उपयोग अक्सर सटीक डेटा पॉइंट के बजाय एक बड़े ऐतिहासिक दौर को दर्शाने के लिए किया जाता था।
समझी।
पॉल बस ये कह रहे थे कि वादे और व्यवस्था के बीच वो पूरा 430 वर्षों का प्रसिद्ध कालखंड बीत चुका था। उनका उद्देश्य एक आध्यात्मिक या कानूनी बिंदु साबित करना था, न कि इतिहास की टाइमलाइन को ठीक करना।
अच्छा, तो उनका फोकस टाइमलाइन नहीं था।
बिल्कुल नहीं। इसलिए विनॉय का अंतिम निष्कर्ष ये है कि जब इतिहास को दोबारा जोड़ने की बात आती है तो हमें मासोरेटिक टेक्स्ट के मूल 430 वर्षों वाले पाठ पर ही टिके रहना चाहिए। क्योंकि ये पाठ ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रामाणिक माना जाता है।
देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। तो अगर हम इस 430 वर्षों को मिस्र में बिताया गया पूरा समय मान लें,
हाँ,
और एक्सोडस की एक प्रारंभिक तिथि जो कि 1446 ईसा पूर्व मानी जाती है उसे स्वीकार कर लें, तो गणित कैसे काम करेगा?
देखिए, अगर हम 1446 को आधार माने,
1446 में 430 साल जोड़ने होंगे और फिर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वो 215 साल भी जोड़ने होंगे।
बिल्कुल।
तो तो पीछे की तरफ इस पूरी गणना को ले जाने पर इब्राहिम के केनान में प्रवेश का समय 2091 ईसा पूर्व स्थापित होता है।
एकदम सही कैलकुलेशन।
तो अब हमारे पास इब्राहिम के लिए एक ऐतिहासिक तारीख है, लगभग 2000 ईसा पूर्व।
और ये तारीख केवल एक संख्या नहीं है, ये वो नींव है जिस पर आगे के सारे पुरातात्विक और ऐतिहासिक सुराग टिके हुए हैं। अगर हम 2091 ईसा पूर्व को एक ठोस आधार मान लेते हैं तो हमें उस समय के बाकी साक्ष्यों को भी इसी नजरिए से देखना होगा।
बिल्कुल।
लेकिन अगर हम इस गणितीय पहेली से थोड़ा आगे बढ़ें तो एक ऐसी चीज है जो इस पूरी टाइमलाइन को पूरी तरह से उलझा देती है।
वो क्या है?
अगर प्राचीन संख्याएं हमेशा शाब्दिक नहीं होती और वे बड़े समय खंडों को दर्शाती हैं, तो उन पारिवारिक सूचियों का क्या जिन्हें वंशावलियां कहा जाता है? वंशावलियां ये प्राचीन इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं।
और यही मेरी सबसे बड़ी उलझन है।
कैसे?
मान लीजिए हम एक्सोडस 6 को देखते हैं।
ठीक है।
वहां मूसा की वंशावली दी गई है जिसमें साफ साफ लिखा है लेवी, कोहात, अमराम और मूसा। केवल 4 नाम।
हाँ।
अब अगर कोई लॉजिक लगाए कि एक सामान्य पीढ़ी 25 से 30 साल, या चलिए मान लेते हैं कि 40 साल की होती है।
हाँ, मैक्सिमम 40 साल।
तो ये 4 पीढ़ियां ज्यादा से ज्यादा 120 या 150 साल की होंगी।
सही गणित है।
तो फिर ये केवल 4 पीढ़ियां 400 से अधिक वर्षों तक कैसे खिंच सकती हैं? क्या ये फिर से उसी 215 वर्ष वाले छोटे सिद्धांत को सही साबित नहीं करता? क्योंकि अगर 430 साल बीते होते तो बीच में बहुत सी पीढ़ियों के नाम होने चाहिए थे।
देखिये, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और आधुनिक इतिहासकार अक्सर यही सबसे बड़ी गलती करते हैं।
कैसी गलती?
वे प्राचीन सूचियों को आज के जन्म प्रमाण पत्रों की तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं।
अच्छा।
आधुनिक समय में वंशावली का मतलब है एक पूरी लिस्ट जहां दादा, परदादा, उनके पिता सबका नाम लाइन से दर्ज होता है।
ये एक मेडिकल या कानूनी रिकॉर्ड की तरह होता है।
हाँ बिल्कुल, एक एक पीढ़ी।
लेकिन प्राचीन मध्य पूर्वी संस्कृतियों में न वंशावलियां इस तरह काम नहीं करती थी। वे जन्म प्रमाण पत्र नहीं थे, वे हाईलाइट रील की तरह थे।
हाईलाइट रील?
मतलब क्या वे जानबूझकर बीच की पीढ़ियों को छोड़ देते थे क्योंकि वो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी?
यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। के ए किचन के अनुसार एक्सोडस 6 जैसी सूचियां कोई पूर्ण जैविक वंशावली नहीं है।
ओके।
ये केवल मुख्य कबीलों और परिवारों की पहचान स्थापित करने का एक तरीका था। जब हम पढ़ते हैं लेवी, कोहात, अमराम और मूसा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमराम मूसा का सगा पिता था जो हर सुबह उसे गोद में खिलाता था।
अच्छा, तो फिर वो क्या था?
लेवी एक बहुत बड़ा समूह या जनजाति है, कुहात उसके अंदर का एक बड़ा कबीला है, और अमराम एक पारिवारिक समूह है जिसमें से सदियों बाद मूसा का जन्म होता है।
ओ।
अमराम और मूसा के बीच कई पीढ़ियां रही होंगी जिनका नाम कभी दर्जी नहीं किया गया क्योंकि इतिहास के नजरिए से वे केवल अमराम के घराने के हिस्से थे।
ये तो दिमाग घुमा देने वाला है। लेकिन क्या इस हाईलाइट रील वाले सिद्धांत का कोई ठोस सबूत है?
बिल्कुल है।
या ये सिर्फ उन 400 सालों को सही ठहराने के लिए गढ़ा गया एक बहाना है? हम कैसे यकीन कर लें कि बीच की पीढ़ियां सच में गायब हैं?
इसका सबूत खुद उन्हीं ग्रंथों के गणित में छिपा है और ये बहुत ही चौंकाने वाला है।
बताइए।
अगर हम नंबर्स 3, 27 और 28 के साक्ष्य को देखें तो वहाँ एक जनगणना का जिक्र है। उस विवरण के अनुसार एक्सोडस के समय अमराम के कबीले में, यानी जो केवल अमराम के वंशज थे, 8600 पुरुष थे।
8600 पुरुष? अरे, ये तो वही बात हो गई जिसका हमने एकदम शुरुआत में जिक्र किया था।
बिल्कुल।
अगर अमराम सिर्फ एक व्यक्ति होता और वो मूसा का सगा पिता होता तो एक ही पीढ़ी में उसके 8600 बेटे और पोते एक साथ कैसे हो सकते हैं?
एकदम सही।
ये तो जैविक रूप से पूरी तरह असंभव है।
और यही वो बिंदु है जहाँ सारी धुंध छट जाती है। एक ही पीढ़ी में 8600 पुरुषों का होना ही इस बात का पक्का प्रमाण है कि अमराम और मूसा के बीच एक बहुत लंबा समय बीता था।
बहुत सारी पीढ़ियां।
हाँ, कई पीढ़ियां गुजरी होंगी तब जाकर वो परिवार बढ़कर 8600 पुरुषों का एक विशाल कबीला बना।
अमरामियों का मतलब था?
वो पूरा बड़ा समुदाय जो अपने मूल पूर्वज अमराम के नाम से पहचाना जाता था।
अच्छा।
इसलिए 4 नामों को देखकर ये मान लेना कि ये केवल 4 पीढ़ियों की कहानी है प्राचीन इतिहास को आधुनिक चश्मे से देखने की सबसे बड़ी भूल होगी।
ये नजरिया सच में सब कुछ बदल देता है। प्राचीन लोग इतिहास को कैसे रिकॉर्ड करते थे ये समझना तो खुद में एक अलग विज्ञान है।
बिल्कुल है।
तो अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि इब्राहिम का समय लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास था और प्राचीन रिकॉर्डिंग का तरीका क्या था, तो आप खुद इब्राहिम की शख्सियत पर आते हैं।
हाँ, इब्राहिम का प्रोफाइल बहुत दिलचस्प है।
आमतौर पर जब भी इब्राहिम का जिक्र आता है तो मन में कैसी छवि बनती है? एक सीधा साधा, गरीब, खाना बदोश इंसान जो अपने परिवार और एक गधे के साथ रेगिस्तान में तंबू लेकर भटक रहा है।
हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं।
लेकिन डॉक्टर वैनॉय के नोट्स में जेनेसिस 14 का जो विवरण दिया गया है वो इस पारंपरिक छवि को पूरी तरह से तोड़ देता है।
बिल्कुल।
उस विवरण को पढ़ने के बाद तो वो एक गरीब यात्री कम और किसी विशाल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का अमीर सीईओ ज्यादा लगता है।
हाँ हाँ, सीईओ।
हाँ, जिसकी अपनी एक बहुत बड़ी निजी सुरक्षा एजेंसी हो, मतलब प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म।
ये सीईओ और प्राइवेट सिक्योरिटी वाली जो उपमा है ना, ये उस समय की ऐतिहासिक सच्चाई के बहुत करीब है।
सच में?
हाँ, ऐतिहासिक रूप से इब्राहिम को ये साधारण खानाबदोश नहीं था। नोट्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वो अपने समय का एक बहुत ही रसूखदार और धनी व्यक्ति था।
अच्छा।
उसके पास अपार संपत्ति थी, भारी मात्रा में सोना, चांदी और अनगिनत मवेशी। उसके पास इतने सारे सेवक और जानवर थे कि एक समय के बाद उसे और उसके भतीजे लूत को अपने रास्ते अलग करने पड़े।
क्योंकि जमीन कम पड़ गई होगी।
बिल्कुल। एक ही इलाके की जमीन उन दोनों की विशाल संपत्तियों का भार नहीं उठा सकती थी। लेकिन जेनेसिस 14 में जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है वो है इब्राहिम का एक सैन्य कमांडर के रूप में उभरना।
ओ हाँ।
वो कहानी जहां चार राजाओं का एक गठबंधन मिलकर हमला करता है, वे लूत का अपहरण कर लेते हैं और फिर इब्राहिम अपनी सेना लेकर उन्हें हरा देता है।
हाँ, वही घटना।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सेना में 318 सेवक थे।
जी, 318।
मतलब क्या 318 लोग सच में राजाओं की सेना को हरा सकते थे? बिल्कुल। जेनेसिस 14 का रिकॉर्ड बताता है कि इब्राहिम के पास 318 प्रशिक्षित सेवक थे, ट्रेन्ड लोग।
अच्छा।
जो उसके अपने घर में पैदा हुए थे। ये कोई भाड़े की सेना नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी वफादार निजी फौज थी। जब लूत का अपहरण हुआ तो उसने इन 318 लोगों को हथियार दिए, उनका नेतृत्व किया और रात के अंधेरे में राजाओं के उस गठबंधन पर अचानक हमला करके उन्हें हरा दिया।
लेकिन इतिहास के कई आलोचक इसी बात पर तो हंसते हैं।
क्यों?
उनका तर्क होता है कि ये कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है। केवल 318 लोग मेसोपोटामिया के राजाओं की एक पूरी गठबंधन सेना को कैसे हरा सकते हैं?
ये एक आम सवाल है।
आज के समय में 318 लोग तो एक छोटी सी बटालियन भी नहीं होते। ये ऐतिहासिक रूप से तो पूरी तरह असंभव लगता है।
देखिए, जो लोग इस घटना पर सवाल उठाते हैं ना, वे अक्सर उस कालखंड की भू राजनीति को समझने में चूक जाते हैं।
भू राजनीति? कैसे?
जब हम राजाओं की सेना सुनते हैं तो हमारे दिमाग में रोमन साम्राज्य या अलेक्जेंडर की लाखों सैनिकों वाली विशाल सेनाओं की तस्वीर बन जाती है।
हाँ, बिल्कुल।
लेकिन हम 2000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। इस संदर्भ को समझने के लिए विशेषज्ञ अमरना लेटर्स का उल्लेख करते हैं।
अमरना लेटर्स?
हाँ, जो लगभग 1400 ईसा पूर्व के हैं। ये प्राचीन पत्र स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि उस समय कनान और उसके आसपास के क्षेत्रों में सैन्य टुकड़ियां बहुत ही छोटी होती थीं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वे किसी विशाल साम्राज्य के महायुद्ध नहीं थे, बल्कि छोटे नगर राज्यों के बीच की स्थानीय झड़पें थीं।
हाँ, एकदम सही। उस समय के तथाकथित राजा अक्सर छोटे शहरों या कस्बों के मुखिया होते थे।
अच्छा।
उनकी सेनाओं में हजारों सैनिक नहीं होते थे, बल्कि कुछ 100 लोग ही होते थे। वे किसी बड़ी विजय के लिए नहीं, बल्कि अक्सर बस लूटपाट करने या कर वसूलने के लिए निकलते थे।
ओह, तो वे कोई बड़ी आर्मी नहीं थे?
नहीं। अमारना लेटर्स बताते हैं कि कभी कभी तो एक शहर की रक्षा के लिए सिर्फ 50 सैनिकों की मांग की जाती थी।
सिर्फ 50?
हाँ। तो ऐसे माहौल में 318 अच्छी तरह से प्रशिक्षित, हथियारबंद और पूरी तरह से वफादार आदमियों का एक समूह जो रात के अंधेरे में अचानक छापा मारता है, वो एक बहुत ही विनाशकारी सैन्य बल साबित हो सकता है। इसलिए ये घटना ऐतिहासिक संदर्भ में बिल्कुल सटीक बैठती है।
वाओ। और अगर ऐतिहासिक सटीकता की बात चली रही है तो उन राजाओं के नामों के इर्द गिर्द भी तो एक बहुत बड़ा भाषाई रहस्य है।
जी बिल्कुल।
नोट्स में बताया गया है कि जेनेसिस 14 में राजाओं के कुछ बहुत ही विशिष्ट नाम दिए गए हैं, जैसे अमराफेल और हैमुराबी। एक समय ये सिद्धांत बहुत लोकप्रिय था कि ये दोनों नाम दरअसल एक ही व्यक्ति के हैं। क्या आधुनिक भाषा विज्ञान इसका समर्थन करता है?
देखिए, एक समय में यह मानना बहुत आकर्षक लगता था कि बाइबल का अमराफेल ही इतिहास का प्रसिद्ध राजा हम्मुराबी है।
हाँ।
लेकिन डॉक्टर वैनॉय इसे ईए स्पीजर जैसे विशेषज्ञों के भाषाई तर्कों के आधार पर पूरी तरह खारिज करते हैं।
अच्छा, खारिज कर देते हैं।
हाँ, अगर भाषा विज्ञान की गहराइयों में जाया जाए तो इन दोनों नामों को एक साबित करना बिल्कुल असंभव है।
ऐसा क्यों? क्या उच्चारण में इतना बड़ा अंतर है?
अंतर ध्वनियों की मूल संरचना में है। हम्मुराबी का नाम एक विशेष सेमिटिक ध्वनि से शुरू होता है जिसे आयन कहते हैं।
आयन।
और ये नाम वाई ध्वनि पर खत्म होता है। दूसरी ओर अमराफेल का नाम एलएफ ध्वनि से शुरू होता है और एल पर खत्म होता है।
अच्छा, एलएफ और आयन।
जी, प्राचीन भाषाओं में आयन और अलेफ बिल्कुल अलग ध्वनियां हैं जिन्हें आपस में बदला नहीं जा सकता। इसलिए सिर्फ मिलते जुलते लगने के कारण उन्हें एक ही व्यक्ति मानना भाषाई रूप से एक बहुत बड़ी भूल है।
मतलब ये दोनों नाम एक हो ही नहीं सकते।
बिल्कुल नहीं। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात एक दूसरे राजा के नाम में छिपी है।
कौन सा राजा?
केदुरलाओमर।
केदुरलाओमर।
ये नाम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किसी सोने की खान जैसा है। ये शुद्ध रूप से एक एलामाइट नाम की संरचना है।
एलामाइट।
हाँ, एलामाइट भाषा में केदोर का अर्थ है सेवक और लाओमर उस क्षेत्र की एक प्राचीन देवी का नाम है।
अच्छा, तो इसका मतलब हुआ?
तो इस नाम का पूरा अर्थ हुआ देवी लाओमर का सेवक। अब भले ही आज के इतिहासकार इस नाम के किसी विशिष्ट राजा को उस कालखंड में पॉइंट न कर सके, लेकिन नाम की ये सांस्कृतिक और भाषाई बनावट साबित करती है कि ये विवरण उसी समय के इतिहास से निकला है। एबला टैबलेट्स की खोज ने भी ये साबित कर दिया है कि उस समय की भौगोलिक और सांस्कृतिक जानकारी बहुत सटीक रूप से दर्ज की गई थी।
ये तो बहुत ही शानदार है कि कैसे एक छोटे से नाम की संरचना में उस पूरे युग की सांस्कृतिक पहचान छिपी होती है।
बिल्कुल।
लेकिन अगर जेनेसिस 14 का विवरण 2000 ईसा पूर्व के इतिहास से इतना सटीक मेल खाता है तो जेनेसिस 21 में जाकर एक बहुत बड़ा गतिरोध पैदा हो जाता है।
आप पलिश्तियों की बात कर रही हैं ना?
वहाँ जिक्र है पलिश्तियों का। कहानी बताती है कि इब्राहिम का उनके साथ एक विवाद होता है। लेकिन अगर किसी भी पुरातत्वविद से पूछा जाए तो वो तुरंत कहेगा कि पलिश्ती तो 1200 ईसा पूर्व के आसपास, जो तथाकथित समुद्री ओगों का आक्रमण हुआ था, उस समय कनान में आए थे।
सही कहा।
तो इस सबका आखिर निष्कर्ष क्या निकाला जाए? अगर कोई प्राचीन ग्रंथ किसी ऐसे समूह का उल्लेख करता है जो इतिहास के हिसाब से उस समय वहाँ मौजूद ही नहीं था, जैसे 2000 ईसा पूर्व में पलिश्ती, तो क्या ये इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि वो ग्रंथ सदियों बाद लिखा गया था या उसमें भारी गलतियां हैं? अकादमिक भाषा में इसे ही तो कालदोष या एनाक्रोनिज्म कहा जाता है ना?
देखिए, ये सवाल सीधे तौर पर पुरातत्व विज्ञान की सीमाओं पर चोट करता है। इसे कालदोष मानकर खारिज करना सबसे आसान रास्ता है। लेकिन जोसेफ फ्री जैसे दिग्गज पुरातत्वविदों ने इस पर एक बहुत ही मजबूत तर्क दिया है जिसे खामोशी का तर्क या आर्ग्यूमेंट फ्रॉम साइलेंस कहा जाता है।
खामोशी का तर्क, इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि अगर इतिहास किसी विषय पर खामोश है तो हम उस पर कुछ कह नहीं सकते?
इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसलिए कि हमें अभी तक जमीन के नीचे से कोई भौतिक सबूत नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज अस्तित्व में ही नहीं थी।
अच्छा।
जो सुफ्री समझाते हैं कि आलोचकों का पूरा तर्क इस बात पर टिका है कि 1200 ईसा पूर्व से पहले कनान में पलिश्तियों के खास तरह के बर्तन, हथियार या बस्तियों के खंडर नहीं मिले हैं। लेकिन ये निष्कर्ष निकालना बहुत जल्दबाजी होगी। ये पूरी तरह संभव है कि 2000 ईसा पूर्व में पलिश्तियों का एक छोटा सा समूह, शायद कोई व्यापारिक दल या शुरुआती खोजकर्ता वहां आया हो और बस गया हो।
हाँ, बिल्कुल संभव है।
और सदियों बाद 1200 ईसा पूर्व में उनकी एक बहुत बड़ी आबादी ने वहाँ बड़े पैमाने पर बस्तियां बसाई हो।
तो ये बात हो गई कि अनुपस्थिति का प्रमाण प्रमाण की अनुपस्थिति नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस।
एकदम सही।
लेकिन क्या पुरातत्व सच में इतना अधूरा हो सकता है कि एक पूरे समूह का कोई नामोनिशान न मिले?
देखिए, अगर इस प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान को देखें तो ये समझना आसान हो जाता है कि पुरातत्व कितना खंडित है। पुरातत्वविद अक्सर टेल यानी उन विशाल टीलों की खुदाई करते हैं। ये टीले तब बनते हैं जब किसी एक ही जगह पर सदियों तक एक के ऊपर एक शहर बसते और उजड़ते रहते हैं।
हाँ, लेयर्स बन जाते हैं।
बिल्कुल। लेकिन अगर कोई समूह जैसे के शुरुआती पलिश्ती या खुद इब्राहिम जैसे लोग खानाबदोश थे, वे लंबे समय तक एक ही स्थान पर नहीं रुके या उन्होंने पत्थर की विशाल इमारतें नहीं बनाई।
वे तंबुओं में रहते थे।
हाँ, वे तंबुओं में रहे और चले गए। उनके निशान खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। हमें पता ही नहीं होता कि खुदाई कहाँ करनी है।
सही बात है।
इसलिए सिर्फ इस आधार पर किसी प्राचीन ऐतिहासिक विवरण को पूरी तरह खारिज कर देना कि हमें अभी तक मिट्टी में उसका सबूत नहीं मिला है, एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक भूल है।
ये विचार सच में इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा के सारे सुरागों को एक साथ जोड़ा जाए तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है।
वो क्या?
कि इतिहास का अध्ययन केवल पत्थरों, सूखी तारीखों और राजाओं की सूचियों को याद करने के बारे में नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल पहेली है।
बिल्कुल है।
इसमें भाषा विज्ञान शामिल है, जैसे एलिफ और आइन ध्वनियों का अंतर। इसमें सांस्कृतिक संदर्भ शामिल है, जैसे 318 सेवकों की सेना उस समय के छोटे नगर राज्यों के हिसाब से कितनी ताकतवर थी। और सबसे बढ़कर इसमें ये समझना शामिल है कि प्राचीन लोग दुनिया को कैसे देखते थे, जैसे उनकी वंशावलियां आज के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बल्कि इतिहास की हाईलाइट रील हुआ करती थी।
यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निचोड़ है। इब्राहिम का जीवन, प्राचीन कालक्रम और उन ग्रंथों की संरचना हमें यह सिखाती है कि आधी अधूरी पुरातात्विक जानकारी या केवल अपने आधुनिक नजरिए के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना कितनी बड़ी गलती हो सकती है।
हमें उनके चश्मे से देखना होगा।
बिल्कुल, हमें उनके समय के चश्मे से उनकी भाषा और संस्कृति के जरिए चीजों को देखना सीखना होगा।
और इसके साथ ही शायद इस बात को स्वीकार करने की विनम्रता भी होनी चाहिए कि हम अभी तक सब कुछ नहीं जानते हैं।
एकदम सही बात है।
इतिहास अभी भी बहुत कुछ कहने को बेताब है, बस हमें सही सवाल पूछने आने चाहिए।
बिल्कुल।
तो चलिए इस बेहद रोमांचक और गहरी चर्चा को यहीं समेटते हैं, लेकिन जाते जाते सुनने वालों के लिए यह एक विचार करने वाली बात है। जरा कल्पना कीजिए कि आज से 4000 साल बाद भविष्य के पुरातत्वविद हमारे आज के इस डिजिटल युग को समझने की कोशिश कर रहे हों।
दिलचस्प।
और मान लीजिए कि समय के साथ हमारे सारे क्लाउड सर्वर, इंटरनेट के तार और हार्ड ड्राइव पूरी तरह नष्ट हो चुके हों, उनके हाथ सिर्फ कुछ टूटे हुए प्लास्टिक के फोन और कुछ कागजी किताबें लगे जिनमें जिक्र हो कि हम हवा के जरिए दुनिया के दूसरे कोने में बात करते थे।
क्या बात है।
विवरणों को वे भविष्य के इतिहासकार काल दोष या असंभव मान लेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें भविष्य की उस मिट्टी में हमारी डिजिटल दुनिया का कोई भौतिक सबूत नहीं मिला। क्या हमारा आज का ये जीता जागता इतिहास भी उनके लिए सिर्फ एक खामोशी का तर्क बनकर रह जाएगा? जरा इस बारे में सोचिएगा।